उदय उठकर वॉशरूम की ओर जा ही रहा था कि नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और रोक दिया। उदय हैरानी से नंदिनी की ओर देख रहा था। नंदिनी उदय के पास आई और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर दोनों गालों को प्यार से सहलाते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। कुछ भी कहे बिना वो धीरे से उदय के बिल्कुल करीब गई और अपने होठ उसके होठों के पास ले जाकर मासूमियत और प्यार से अपने होठों को उदय के होठों पर रख दिया। जैसे ही उदय ने नंदिनी के होठों को अपने होठों पर महसूस किया, वो बिल्कुल स्तब्ध रह गया। वो हैरानी से नंदिनी की ओर देख रहा था। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं। नंदिनी ने उदय के दोनों हाथों को पकड़कर उसकी कमर पर रख दिया और अपने हाथ उदय की गर्दन में डालकर उसे किस करने लगी। नंदिनी की आंखें बंद थीं और वो उदय से अपनी नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो अपनी आंखें बंद करके धीरे धीरे उदय के होठों को चूम रही थी। तभी नंदिनी ने उदय की शर्ट के बटन खोलना शुरू कर दिए। उदय के हाथ, जो अभी तक नंदिनी की कमर पर थे, उसने हटा लिए और नंदिनी के हाथों को पकड़कर रोकते हुए उसे किस करने से रोक दिया। उसे बेड पर बिठाते हुए उदय ने कहा, रिलैक्स नंदिनी, आपको इतनी जल्दी में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं आप हमारी बातों से प्रभावित होकर आगे बढ़ रही हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि जब आप पूरी तरह से हमें स्वीकार कर लें और जब आपको सच में हमसे प्यार हो जाए, तब हम आगे बढ़ेंगे। नंदिनी ने उदय की बात सुनकर हैरानी से उसकी ओर देखा और बोली, लेकिन अभी तो आप मेरे करीब आना चाहते थे, हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो फिर अब आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? उदय ने नंदिनी के गाल को सहलाते हुए अपना हाथ उसके गाल पर रखा और अपने माथे को उसके माथे से मिलाते हुए धीरे से अपनी नाक को नंदिनी की नाक पर रगड़ते हुए कहा, बेशक हम अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे नहीं, जब आप खुद ऐसा करना चाहें तब। हम नहीं चाहते कि आप सिर्फ हमारे कहने से और हमारी खुशी के लिए ये सब करें। हम दोनों के लिए ही ये पल बहुत खूबसूरत होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि सिर्फ हमारी वजह से आप खुद को ऐसी स्थिति में डाल दें और फिर बाद में कभी भी आपको इस बात को लेकर पछतावा हो। हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारी प्यारी सी पत्नी भविष्य में किसी भी बात को लेकर पछतावा महसूस करे। इतना बोलकर उदय ने प्यार से नंदिनी के माथे को चूम लिया। नंदिनी उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी। उदय अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और कहा, आप सो जाइए, हम वॉशरूम से आते हैं। नंदिनी ने सिर हिलाया और आराम से बेड पर अपनी तरफ मुड़कर लेट गई। उदय वॉशरूम गया, उसने अपना चेहरा पानी से धोया और शीशे में खुद को देखकर मुस्कुराया। उसने अपने होठों को छूते हुए कहा, आखिरकार आज नंदिनी ने मुझे किस तो किया, मैं बहुत खुश हूँ। उदय अपने होठों को प्यार से छू रहा था। उसे अभी भी नंदिनी के होठ अपने होठों पर महसूस हो रहे थे। वो बहुत खुश लग रहा था। उसका चेहरा चमक रहा था और उस पर ब्लश साफ दिखाई दे रहा था। वहीं नंदिनी बेडरूम में अकेली थी। उसने भी अपने होठों को छूते हुए कहा, उदय को किस करने के बाद मैं इतना तरोताज़ा क्यों महसूस कर रही हूँ? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है? क्या सच में जिससे हम प्यार करते हैं उसे किस करने के बाद ऐसा ही लगता है? नंदिनी ये सब सोच ही रही थी कि उदय वॉशरूम से बाहर आ गया। उसने देखा कि नंदिनी भी अपने होठों को छूते हुए अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। उदय ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखकर मन ही मन कहा, अच्छा तो सिर्फ मैं ही किसके बारे में नहीं सोच रहा था, मतलब नंदिनी भी सोच रही है। उदय इतना बोलकर मुस्कुराने लगा। वो बेड के पास आया और अपना गला साफ करते हुए बोला, तो क्या सोच रही है नंदिनी? नंदिनी ने उदय की आवाज सुनते ही अपने होठों से हाथ हटा लिया और सिर हिलाते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं। इतना बोलकर नंदिनी ने कंबल उठाया और उसे अपने ऊपर डाल लिया। उदय भी अपनी तरफ मुड़कर लेट गया और कंबल अपने पैरों पर डाल लिया। नंदिनी उदय की तरफ देखकर मुस्कुराई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, थैंक यू सो मच उदय, आपने मेरी भावनाओं और मेरे फैसले का सम्मान किया। उदय उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, हम तो आपके हर फैसले का सम्मान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वैसे भी वो प्यार ही क्या जिसमें सम्मान ना हो। उदय के इतना कहते ही नंदिनी उदय के बिल्कुल करीब आई और उसके सीने पर अपना सिर रखते हुए बोली, आप सच में बहुत अच्छे हैं उदय। नंदिनी की बात सुनकर उदय मुस्कुराया और उसने नंदिनी के माथे को चूमते हुए कहा, आप भी। इतना बोलकर उसने नंदिनी को और करीब खींच लिया और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। वे दोनों एक दूसरे से लिपट कर सो गए थे और नंदिनी को भी इससे कोई परेशानी नहीं थी। वे अक्सर ऐसे ही करीब होकर सो जाते थे। इप्सिता अपने कमरे में थी और उसने अपना फोन हाथ में नहीं लिया था। जहाँ उसने छोड़ा था वहीं उसका फोन पड़ा हुआ था। इप्सिता अपने फोन की ओर देखते हुए बोली, क्यों अभिमन्यु, क्यों आए आप फिर से मेरी जिंदगी में, मेरी खुशियों को बर्बाद करने के लिए? इप्सिता इतना सोच ही रही थी कि उसके फोन पर मैसेज का नोटिफिकेशन आया। इप्सिता ने डरते डरते अपना फोन उठाया और देखा कि अभिमन्यु के 20 से 25 मैसेज पड़े हुए थे। उसने मैसेज खोले और देखा कि हर मैसेज में अभिमन्यु ने एक ही बात लिखी थी, आई एम सॉरी इप्सिता, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लीजिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, मुझे आपको कुछ ऐसा बताना है जिसका आपको जानना बहुत जरूरी है। इप्सिता ने अभिमन्यु के इतने सारे मैसेज देखकर गहरी सांस ली और बोली, अभिमन्यु क्या आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? वो मैसेज देखकर चिढ़ते हुए बोली। फिर उसने अभिमन्यु का नंबर उठाकर उसे ब्लॉक कर दिया, ताकि अभिमन्यु उसे ना तो कॉल कर सके और ना ही मैसेज भेज सके। इप्सिता अभिमन्यु के बारे में सोच ही रही थी कि एक अनजान नंबर से उसके फोन पर कॉल आया। इप्सिता ने अनजान नंबर देखते हुए कहा, अब ये किसका नंबर है? जैसे ही इप्सिता ने कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से अभिमन्यु की आवाज आई। इप्सिता, आपको क्या लगता है मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगा? आप मेरा नंबर ब्लॉक करेंगी तो मैं आपको दूसरे नंबर से कॉल करूंगा। इप्सिता ने अभिमन्यु की ये बात सुनकर तेज आवाज में चिल्लाई, आप मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते? पहले ही आपने मुझे डंप कर दिया है तो अब इस तरह से मेरे पीछे पड़ने का क्या मतलब है अभिमन्यु? आप ऐसा करके मेरी नजरों में अपनी बची कुची इज्जत को भी खराब कर रहे हैं। प्लीज मुझे परेशान करना बंद करिए और जितना हो सके मुझसे उतना दूर चले जाइए। अभिमन्यु ने इप्सिता की बात सुनकर कहा, अब तो मैं आपसे चाहकर भी दूर नहीं जा सकता इप्सिता। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि इप्सिता ने उसकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और उसने तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और फिर उस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया। थोड़ी देर बाद इप्सिता के पास तीसरे अनजान नंबर से कॉल आया। इप्सिता समझ गई कि यह नंबर भी अभिमन्यु का ही होगा, इसलिए उसने उस नंबर को उठाया ही नहीं और बिना कुछ सोचे समझे उसे भी ब्लॉक कर दिया। जैसे ही इप्सिता ने वह नंबर ब्लॉक किया, उसने अपना फोन स्विच ऑफ करते हुए कहा, बस बहुत हुआ, मुझे चैन से सोना है और जब तक मेरा फोन ऑन रहेगा मुझे नहीं लगता अभिमन्यु मुझे सोने देंगे। इतना बोलकर इप्सिता ने अपना फोन स्विच ऑफ किया, उसे बेड के टेबल के दराज में रख दिया और दराज को जोर से बंद कर दिया। इप्सिता ने अपने बालों में हाथ डालकर अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश की और खुद की बोली, रिलैक्स इप्सिता, तुम्हें इस तरह से अभिमन्यु की बातें और उनकी मौजूदगी परेशान नहीं कर सकती। तुम किसी को भी अपने इतना करीब नहीं कर सकती कि उनकी मौजूदगी तुम्हारे लिए सिरदर्द बन जाए, और वैसे भी अभिमन्यु तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, इसलिए उनके बारे में सोचना बंद करो और अपने भविष्य पर ध्यान दो और आराम से सो जाओ। इप्सिता खुद को ये बात समझा रही थी, तभी उसने धीमी आवाज में कहा, मैं अब किसी के बारे में नहीं सोचूंगी।
इतना बोलकर उसने अपने कमरे की लाइट्स ऑफ की और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और वो सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन इप्सिता के लिए ये कहना जितना आसान था, करना उतना ही मुश्किल। जब जब इप्सिता आंख बंद कर रही थी, उसके सामने अभिमन्यु का चेहरा आ रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने दिल और दिमाग को शांत किया। काफी देर बाद उसे नींद आई। अगले दिन सुबह इप्सिता का सिर बहुत भारी लग रहा था, क्योंकि वो रात में देर से सोई थी। वहीं उदय और नंदिनी तैयार होकर सीधे नाश्ते की मेज पर आकर बैठ गए थे। नंदिनी ने इधर उधर देखते हुए कहा, इप्सिता कहाँ है? नंदिनी की ये बात सुनकर उदय ने कहा, पता नहीं, हमें भी यहाँ आए 5 मिनट हो गए लेकिन वो अभी तक कहीं नजर नहीं आई है। नंदिनी ने कहा, कहीं वो अभी तक सो तो नहीं रही, मैं उसे देख कर आती हूँ। इतना बोलकर नंदिनी इप्सिता के कमरे में गई। उसने देखा कि इप्सिता अपना सिर पकड़कर बैठी हुई थी। नंदिनी उसके पास आई और बोली, क्या हुआ इशू, तुम इस तरह अपने सिर पर हाथ रखकर क्यों बैठी हो और तुमने आज उठने में इतनी देर कैसे कर दी? इप्सिता ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, 9:30 बज गए हैं, इतनी देर कैसे हो गई हम? इतना बोलकर इप्सिता उठकर जाने लगी। तभी नंदिनी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है क्या? इप्सिता ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ यार, पता नहीं क्यों सिर थोड़ा भारी लग रहा है। नंदिनी ने कहा, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है तो तुम आज छुट्टी ले लो। नंदिनी की बात सुनते ही इप्सिता के दिमाग में एक ख्याल आया। उसने थोड़ा सोचने के बाद सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, मैं चलूंगी, और वैसे भी हल्का सा सिरदर्द है, अभी फ्रेश होंगी तो ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर इप्सिता सीधे अपने वॉशरूम में चली गई। नंदिनी उसका ऐसा व्यवहार देखकर अपने मन में बोली, इसे क्या हो गया है, ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? इप्सिता का ये व्यवहार नंदिनी को काफी अटपटा लगा। वो कंधे उचकाकर उसके कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, हो सकता है उसके सर में हल्का दर्द हो रहा हो, चलो पहले नाश्ता कर लेते हैं। इतना बोलकर नंदिनी उसके कमरे से बाहर निकलते हुए बोली, इशू, हम नाश्ते की मेज पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से आ जाना। इप्सिता ने वॉशरूम के अंदर से ही कहा, हाँ ठीक है, मैं बस 2 मिनट में आई। इतना बोलकर इप्सिता फटाफट तैयार हुई। ऑफिस के लिए उसने बहुत ही साधारण कपड़े पहने।